मिड का आत्मवादी सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक एवं समाज मनोवैज्ञानिक मार्गरेट मिड ने समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो आत्मवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यह सिद्धांत मिड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। कूले के समाजीकरण के सिद्धांत और मिड के समाजीकरण के सिद्धांत में बहुत हद तक समानता है, लेकिन जहां कूले ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों पर अधिक बल दिया है, वहीं मिड ने व्यक्ति की तुलना में समाज पर अधिक बल दिया है। मिड का कहना है कि व्यक्ति समाज का निर्माता है और उसमें दिमाग एवं स्वयं होता है। स्वयं से मिड का तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक संरचना से है जो मनुष्य के सामाजिक अनुभवों के कारण उत्पन्न होता है। मिड का कहना है कि जब व्यक्ति में स्वयं पैदा होता है, तब वह स्वयं को सामाजिक अनुभव करता है। जिस प्रक्रिया द्वारा स्वयं का विकास होता है, मिड ने उसे भी समझाया है। साथ ही मिड ने आत्म की चेतना को ही समाजीकरण का आधार माना है। इस आत्म की चेतना की उत्पत्ति सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान होता है। अपने कथन की पुष्टि के लिए मिड ने व्यक्ति के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला जैविकीय व्यक्ति तथा दूसरा सामाजिक रूप से आत्मचेतन व्यक्ति होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय वह एक जैविकीय प्राणी रहता है और उसे कोई ज्ञान नहीं होता। उसमें तार्किक बुद्धि का अभाव रहता है और वह अपनी आंतरिक प्रेरणाओं के अनुसार एक कार्य करता है। यह अवस्था व्यक्ति की जैविकीय अवस्था कहलाती है। धीरे धीरे बच्चा समाज के संपर्क में आता है और उसके व्यवहारों पर समाज का प्रभाव पड़ने लगता है। परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों के संपर्क में आने के कारण वह विभिन्न व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है और यह समझने लगता है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे बच्चे का आत्म दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है। मिड ने दूसरे लोगों के व्यवहारों को ही सामान्यीकृत व्यवहार कहा है, जो बच्चे को सामाजिक रूप में आत्मचेतन के व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मिड ने स्वयं का स्पष्टीकरण करते हुए मैं और मुझे शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए मिड ने समाजीकरण के इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा है। मैं से व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार की झलक मिलती है। मुझे से व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया का बोध होता है, जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। मिड के अनुसार मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्वयं का विकास होता है। हालांकि आरंभिक अवस्था में मैं और मुझे की धारणा अलग अलग प्रतीत होती है, लेकिन बाद में सामाजिक संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित हो जाती है। मिड ने आत्म का विकास के संबंध में बताया है कि बच्चा आरंभ से ही अपने माता पिता तथा परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों से प्रभावित होने लगता है, लेकिन उसमें आत्म का विकास तब होता है जब वह गुड्डे गुड़ियों के खेल में स्वयं माता पिता की भूमिका निभाने लगता है। साथ ही वह अपने से छोटे बच्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश भी करने लगता है। इन सभी क्रियाओं के दौरान बच्चा अपने प्रति कुछ धारणा विकसित कर लेता है। उसकी धारणा अपने प्रति अपने आप नहीं बनती, बल्कि दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर बनती हैं। बच्चे की यही अवस्था उसका आत्म कहलाती है, जिसके द्वारा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। इस आत्म का समुचित रूप में विकास होना ही मिड के अनुसार समाजीकरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभ में बच्चा दूसरे के संकेतों के आदि के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को समझने की चेष्टा करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें भाषा का विकास होता है तब वह दूसरे के व्यवहारों को स्वयं आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार वह विभिन्न भूमिकाओं को निभाने में स्वयं को सामर्थ्यवान पाता है। इस स्थिति को मिड ने आत्म के विकास की संज्ञा दी है। उपयुक्त विचारों के अवलोकन से यह पता चलता है कि मिड ने विभिन्न रूपों में समाजीकरण के सिद्धांत की चर्चा की है। उनके सिद्धांतों के निम्नलिखित बिंदु कहे जा सकते हैं। पहला, जब व्यक्ति के आत्म का समुचित विकास हो जाता है तब उसे समाजीकरण कहा जाता है। दूसरा, जब दूसरे लोगों का सामान्यकृत व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार में समाविष्ट होता है तब आत्म का विकास होता है। तीसरा, जब व्यक्ति के आत्म का विकास हो जाता है तब वह एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में आत्मचेतन प्राणी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चौथा, जिस मात्रा में व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय तथा संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर देता है उसी मात्रा में व्यक्ति का समाजीकरण होता है।